स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 9 दिसंबर और दिन सोमवार। लोकसभा में आज पेश होगा नागरिकता संशोधन बिल, लेकिन पूर्वोत्तर में लोग नाराज।
बंगाली स्पीकिंग है अभी 28%, कैप लागू होने से वो लोग 40% तक चला जाएगा। करीब असमिया का जो आइडेंटिटी और सेपरेट लैंग्वेज है उसको ऊपर खतरा है।
दिल्ली अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजन का बुरा हाल।
वो कह रहे थे कि भैया यहाँ आग लग गई है और भैया जो है मेरे घर का ध्यान रखना, और मुझे पीछे से चिक्के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और भी शायद लोग हुआ।
हांगकांग में अब तक का सबसे विशाल प्रदर्शन। और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में विवादित नागरिकता संशोधन बिल पेश करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया है, इसलिए आज का संसदीय सत्र हंगामेदार होने की आशंका है। इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले देश में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी। हांगकांग में 6 महीने से जारी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के दौरान रविवार को अब तक की सबसे बड़ी रैली निकली। छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बावजूद रैली शांतिपूर्ण रही। 2 सप्ताह पहले स्थानीय निकाय चुनाव में लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवार भारी मतों से विजयी हुए हैं। शहर में अपेक्षाकृत शांति बनी हुई है। पुलिस ने कहा है कि तोड़फोड़ की 2 घटनाओं की जांच की जा रही है, जिसमें अदालत की इमारत पर पेट्रोल बम फेंके गए। रैली के पहले पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में उस इमारत के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें रविवार को लगी आग से 43 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों का कहना है कि 67 लोगों को बचाया गया। शहर के सबसे घनी आबादी वाले इलाके में स्थित इस इमारत में आग बुझाने के उपकरण नहीं थे और न ही सुरक्षा सर्टिफिकेट ही थे। मृतकों में अधिकांश प्रवासी मजदूर थे जो फैक्ट्री में सो रहे थे। अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI ने कहा है कि उसका मानना है कि अमरीकी नेवी बेस में 3 लोगों को मारने वाले सऊदी एयरफोर्स लेफ्टिनेंट ने इस घटना को खुद अंजाम दिया था। स्पेशल एजेंट राजेश रोजास ने कहा है कि हमलावर की मंशा का वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये एक आतंकवादी कार्रवाई थी। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डे सेंटिस ने सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है।
He had a major social media trail. This guy was somebody who,
सोशल मीडिया पर हमलावर की तीखी आलोचना हो रही है। इस व्यक्ति में अमेरिका के प्रति गहरी नफरत थी, ये बिल्कुल साफ है, और ये साफ था कि वो ऐसा कोई काम करता। मेरे हिसाब से विदेशी नागरिकों को भर्ती करने से पहले सावधानी बरतनी होगी और सऊदी अरब से लोगों को भर्ती करने को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। ये थे गवर्नर रॉन डे सेंटिस के शब्द। हिंसा बढ़ने के बावजूद इराक की राजधानी बगदाद में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। शुक्रवार को तहरीर स्क्वायर पर जमा हजारों प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। इस घटना में 20 प्रदर्शनकारी और 4 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। 2 महीने से चल रहे प्रदर्शनों में अब तक 440 लोग मारे जा चुके हैं। छात्रों ने नाजा में स्थित कुफा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। हम यहाँ दुनिया को संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अपनी जायज मांगों को लेकर हम शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकले। हमें घुसपैठिया कहा गया ताकि प्रदर्शनकारियों की छवि धूमिल की जा सके। उम्मीद है कि वो सफल नहीं होंगे। हम प्रतिरोध जारी रख रहे हैं और जब तक हमारे अधिकार नहीं मिल जाते हम टेंट में बने रहेंगे। ये थे एक प्रदर्शनकारी छात्र के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। एक वरिष्ठ अमरीकी डेमोक्रेट सदस्य का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और अगर मामला ज्यूरी के पास आता है तो उनको दोषी ठहराने में देर नहीं लगेगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जुडिशियरी कमेटी के प्रमुख जेराल्ड नाडलर ने कहा है कि सप्ताह के अंत तक उनका पैनल ट्रंप के खिलाफ आरोप तय कर देगा। पेंशन स्कीम को बदलने के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कैबिनेट की बैठक की है। मैक्रों पूरे देश के लिए एक पेंशन व्यवस्था लागू करने पर अड़े हुए हैं, लेकिन फ्रांस की लेबर यूनियनों को डर है कि कर्मचारियों की पेंशन कम हो जाएगी। 4 दिन तक चले विशाल प्रदर्शनों और यातायात कर्मचारियों, डॉक्टरों, अध्यापकों और वकीलों के हड़ताल के कारण जनजीवन ठप सा पड़ गया है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है दिसंबर की 9 तारीख और दिन है सोमवार और इस वक्त भारत में बज रहे हैं सुबह के 6:34 और 44 सेकंड। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत नागरिकता संशोधन बिल से। सरकार आज लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश कर सकती है। उधर पूर्वोत्तर राज्यों खासकर असम में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई छात्र संगठनों ने इस बिल के खिलाफ सोमवार यानी आज से 48 घंटे का बंद बुलाया है। वहीं 7 राज्यों के छात्र निकाय नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार यानी कल सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूर्वोत्तर राज्यों में बंद का आह्वान किया है। सुनिए गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
असम में बीते कुछ दिनों से नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ विरोध कर रहे लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। आरएसएस गो बैक के नारे लगा रहे लोग सत्ताधारी बीजेपी को भी सतर्क करते सुनाई दे रहे हैं। छात्र संगठनों से लेकर स्थानीय कलाकार, लेखक, बुद्धिजीवी समाज और विपक्षी दलों के लोग अलग अलग तरीकों से नागरिकता बिल के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बिल के खिलाफ लोगों की कड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं और सरकार में बैठे लोगों के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवा लिया जाएगा। ऐसे में पूर्वोत्तर राज्यों के स्वदेशी लोगों का एक बड़ा वर्ग इस बात से डरा हुआ है कि इन शरणार्थियों के प्रवेश से उनकी पहचान, भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य भाजपा पर नागरिकता संशोधन बिल की आड़ में हिंदू वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं।
आज की तारीख में एक कथा प्रतिष्ठा हो गई जे कांग्रेस ने बांग्लादेशी रक्षणाबेक्षण
ये बात अब साबित हो गई है कि कांग्रेस ने बांग्लादेशियों को सुरक्षा देने के लिए IMDT कानून थोपा था और अब बीजेपी अवैध बांग्लादेशियों को सुरक्षा देने के लिए कैप थोप रही है। सबको बांग्लादेशियों का वोट चाहिए। ये थे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य के शब्द। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन से छात्र राजनीति की शुरुआत करते हुए असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि आंदोलन के जरिए असम के भविष्य में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। हमारी सरकार ने कभी भी जाति को नुकसान नहीं पहुंचाया है और न ही भविष्य में ऐसा करेगी। हम असमिया जाति की सुरक्षा के लिए शुरू से काम कर रहे हैं। मैं आंदोलनकारियों को आह्वान करता हूं कि आंदोलन के जरिए असम का भविष्य नहीं बदल सकते। ये थे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के शब्द। नागरिकता संशोधन बिल के पारित हो जाने से क्या असमिया जाति, भाषा और उनकी संस्कृति पूरी तरह खत्म हो जाएगी? इस सवाल का जवाब देते हुए वरिष्ठ पत्रकार बैंकुंठनाथ गोस्वामी कहते हैं,
ये मुस्लिम लोग जो इमिग्रेंट मुस्लिम लोग माने बंगाली मुस्लिम जिसको बोलता है वो लोग बंगाली स्पीकिंग था, लेकिन असम में आके जब सेटल किया तो वो लोग ने असमिया भाषा एक्सेप्ट कर लिया। तो वो लोग को अभी छोड़ेगा तो असमिया भाषा इसे भी 48% है, वो तो करीब करीब 35% में आ जाएगा। अभी बंगाली स्पीकिंग है अभी 28%। कैब लागू होने से वो लोग 40% तक चला जाएगा करीब। असमिया का जो आइडेंटिटी और सेपरेट लैंग्वेज है उसको ऊपर खतरा है।
नागरिकता संशोधन बिल में धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, पारसी, जैन और ईसाई लोगों को कुछ शर्तें पूरी करने पर भारत की नागरिकता देने की बात कही जा रही है, लेकिन असम में नागरिकता रजिस्टर यानी NRC की फाइनल लिस्ट से जिन 19 लाख लोगों को बाहर किया गया है उनमें करीब 12 लाख हिंदू बंगाली है। यही वजह है कि बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के अनाज मंडी में रविवार की सुबह स्कूल बैग बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से 43 लोग मारे गए। मारे गए लोगों के रिश्तेदार LNJP अस्पताल पहुंच रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कुछ रिश्तेदारों की आवाज।
कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई मुझसे दूर हो
जाएगा। 3-4 बजे मेरे को जब छुट्टी हुआ, 2 बजे कारखाने थे, तो मैं नहा धो के जैसे बाहर गया तो मुझे घर से फोन आया जो फलना आदमी तुम्हारा रिश्तेदार ऐसे ऐसे हो गया। तब हम 4 आदमी दोस्त अपना रिक्शा करके मैं यहाँ आया हूँ। तब पूछते पूछते अर्बन हॉस्पिटल किधर है, तब जाके आया हूँ, देखा हूँ तो वही लाश है। सही
1000 रुपया घर पे लगाता था तो उसका घर चलता था। बाप बीमार रहता है, दोनों पैर से नकाम है, पैर से नहीं चल पाते बाप।
वो कह रहे थे कि भैया यहाँ आग लग गई है और भैया जो है मेरे घर का ध्यान रखना, और मुझे पीछे से चिक्के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और भी शायद लोग हुआ तो मुझे को आवाज़ आ रही थी। मैंने भैया वहाँ से कूद जाओ, बोला कूदने के कोई जंग रास्ता है नहीं निकलने के लिए।
राजधानी दिल्ली में किसी इमारत में आग लगने और दर्जनों लोगों की जान जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले उपहार कांड, करोलबाग के होटल में लगी आग जैसे कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन राजधानी में बनी इन इमारतों में आग लगने की वजह क्या है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता भूमिका राय ने बात की डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर एके जैन से।
जिम्मेदार बेसिकली तीन लोग हैं। एक तो जो ओनर था प्रॉपर्टी का, उसने वहां पर विदाउट एनी एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो जो फैक्ट्री ओनर है उसने जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके उसमें अनऑथराइज फैक्ट्री चला रहा था बिना लाइसेंस के, बिना फायर डिपार्टमेंट के एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, एक तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। दूसरी गलती थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उनकी गलती यह है उन्होंने इसको चेक क्यों नहीं किया और रोका क्यों नहीं। और तीसरी गलती है फायर डिपार्टमेंट की। फायर डिपार्टमेंट के रूल कहते हैं कि 11 मीटर से ऊंची कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होगी तो वो उसको एनओसी लेना पड़ेगा, और 15 मीटर से ऊंची होगी तो फायर का एनओसी लेना पड़ेगा। तो उसने अगर एनओसी नहीं लिया तो सीओ मोटो मतलब कि खुद ही फायर डिपार्टमेंट उसको सील कर सकता था, तो उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। तो ये तीन हैं जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकी तो ठीक है, क्यूरेटिव और रिस्पॉन्सिव जो एक्शन है वो लिया जा रहा है, और जैसे अरेस्ट हो गया वो आदमी, अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता फायर डिपार्टमेंट, तो उन पे क्या एक्शन होगा ये अभी देखना बाकी है।
सर, जब कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी इलाके में तो सेफ्टी नॉर्म्स क्या रखे जाते हैं?
कंस्ट्रक्शन जब भी होता है, इसमें तो ये पहले ही कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ था ये हम अस्यूम कर रहे हैं, तो इसमें जब मास्टर प्लान बना था दिल्ली का 2021 का, तो उसमें बड़ा क्लियर था कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी और फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट सब प्रोड्यूस करेंगे ताकि उनकी बिल्डिंग या उनका जो एक्टिविटी है वो रेगुलराइज हो सके। वो किसी ने ले लिया नहीं, तो एक तो ये है कि ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि प्लानिंग के नॉर्म्स हैं कि कम से कम 6 मीटर सड़क हो ताकि एम्बुलेंस वगैरह जा सके, सड़क के ऊपर पार्किंग के की व्यवस्था सड़क से थोड़ी सी अलग हटके हो ताकि उसमें अगर कोई इमरजेंसी हो तो व्हीकल एम्बुलेंस है या फायर टेंडर है वो पहुंच पाए। तीसरा, उसमें फायर हाइड्रेंट होने चाहिए थे, फायर हाइड्रेंट की कोई इंतजाम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि पानी भी नहीं है वहां पर। तो कई सारी चीजें हैं जो कि कंपाउंड हो रही थी और सबको पता था कि यह गलत हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि अभी फरवरी में इसी साल अर्पित होटल करके करोलबाग में, वहां पर भी इस तरह का हादसा हुआ था, लेकिन वहां पर सड़क की विड्थ ठीक थी, मतलब करीब वहां पे 60 फुट की सड़क थी और टेंडर वगैरह टाइम से पहुंच गए, लेकिन फिर भी बचाव नहीं हो पाया। इससे पहले 22 साल पहले 1997 में उपहार सिनेमा में फायर हुई थी जिसमें कि करीब 60 लोगों की जान चली गई थी।
ये थे डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर एके जैन। और अब बात हांगकांग की। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के 6 महीने पूरे हो गए हैं। बीते सप्ताहांत अब तक का सबसे बड़ी रैली हुई, लेकिन सरकार की नरमी और स्थानीय चुनावों में लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों की भारी जीत के बाद भी हिंसा का सिलसिला थमा नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए संदीप राय से।
हांगकांग की सड़कों पर रविवार को अब तक का सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ। बीते अगस्त से पहली बार पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक ग्रुप सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट की इस रैली को इजाजत दी। आयोजकों का कहना है कि इसमें करीब 8 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की संख्या 1,83,000 बताई है। रैली के पहले पुलिस ने छापा मारकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया और एक हैंडगन बरामद की। एक विवादित प्रत्यर्पण विधेयक को लेकर बीते जून में यहां प्रदर्शन शुरू हुए थे और ये अब व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों में तब्दील हो गए हैं। लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता और रिटायर्ड अकादमिशियन जोसेफ चेंग भी इस रैली में शामिल थे। स्थानीय निकाय के चुनावी नतीजों से लोग बहुत खुश और संतुष्ट हैं और आम लोगों की नज़र में ये अपनी ताकत का और राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यहाँ के लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देश की खामोश बहुसंख्या लोकतंत्र समर्थक आंदोलन और प्रदर्शनकारियों के पक्ष में है। ये थे जोसेफ चेंग के शब्द। दूसरी तरफ शनिवार को एक बयान जारी कर सरकार ने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि उसने सबक हासिल किया है और अब सहानुभूति के साथ लोगों की बात सुनेगी और आलोचना को स्वीकार करेगी। इस रैली के बाद सरकार ने कहा कि वो हांगकांग की गहराती समस्या को बातचीत के माध्यम से हल करने का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है। बीते 9 जून को जब पहली बार विशाल रैली हुई तब से सोमवार को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इन प्रदर्शनों की वजह से एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है जिसने चीन के इस अर्ध स्वायत्त इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। रैली के आयोजनकर्ता सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट का कहना है कि सरकार के पास उनकी मांगों को मानने का आखिरी रास्ता बचा है। वो प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसिया बर्ताव की स्वतंत्र जाँच कराए, जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। हाल के दिनों में ये प्रदर्शन हिंसक होते गए जिसकी वजह से ये भी संकट पैदा हुआ कि इस अशांति को कैसे रोका जाए। जून से अब तक 6,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इससे लोगों में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त है। हमारे बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं, वो घायल हैं और बहुत सारे लोग बिना कारण अपनी जान गंवा बैठे। इन सब वजहों से हमारे अंदर भारी गुस्सा है। ये थे एक प्रदर्शनकारी केविन योंग के शब्द। हालांकि रविवार की रैली आमतौर पर शांतिपूर्ण रही लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा की भी खबरें आई हैं। इस रैली के अंतिम पड़ाव पर प्रदर्शनकारियों ने अपने मोबाइल के टॉर्च से रोशनी की और सरकार विरोधी नारे लगाए।
तो हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और अखबारों की समीक्षा के लिए संदीप मौजूद हैं स्टूडियो में। जी बताएं संदीप, क्या कहते हैं अखबार आज के?
जी इकबाल, दिल्ली से छपने वाले आज के सारे अखबारों में भीषण अग्निकांड की खबर लीड बनाई गई है। पुरानी दिल्ली के व्यस्ततम इलाके अनाज मंडी के पास स्थित एक अवैध कारखाने में रविवार को सुबह भीषण आग लग गई थी जिसमें 43 मजदूरों की मौत हो गई थी। हिंदी के लगभग सारे अखबारों ने इस खबर को अपने फ्रंट पेज पर बैनर बनाया है और आधे पेज पर इसको जगह दी है। नवभारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज का आधा हिस्सा इस खबर को दिया है और हेडिंग लगाई है मौत की फैक्ट्री। हिंदुस्तान ने भी इस खबर को बैनर बनाया है और पूरे घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया है। पंजाब केसरी इसे बैनर बनाते हुए हेडिंग दी है, अवैध फैक्ट्री बनी डेथ चैम्बर। इसी तरह दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को बैनर बनाया है और काले रंग का बैकग्राउंड दिया है। लेकिन इन अखबारों में दूसरी अन्य प्रमुख खबरें भी हैं जिसमें एक अहम खबर उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के अंतिम संस्कार की है। नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार कड़ी सुरक्षा और लंबी खींचतान के बाद उन्नाव की रेप पीड़िता का शव रविवार को दफन कर दिया गया। प्रशासन ने परिवार को नौकरी हथियार का लाइसेंस देने का भरोसा दिया, तब परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी
तैयार हुए।
इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसके अनुसार सरकार ने जेएनयू छात्रों के साथ सुलह का संकेत देते हुए छात्र संघ को फिर से मान्यता देने और पुलिस में दर्ज मामले वापस लेने को विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि देश में बढ़ती महिला हिंसा पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरते। पुणे में पुलिस अधिकारियों के एक सम्मेलन में मोदी बोल रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। एक अन्य खबर है जिसमें भारत की आर्थिक सुस्ती के को लेकर के रघुराम राजन ने बयान दिया है। ये खबर जनसत्ता अखबार में छपी है। रघुराम राजन कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय सुस्ती के चंगुल में फंसी है और इसमें बेचैनी और अस्वस्थता के गहरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से लिए जाते हैं और मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं है। इस बात का जिक्र आप जानते होंगे कि कई लोग कर चुके हैं
कि कई लोगों में बीजेपी के अपने ही एक सांसद शामिल हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ 1.5% जो है वो विकास दर है, हालांकि जो सरकारी आंकड़े हैं वो 4.5% है विकास दर के।
जी हिंदू अखबार है, उसमें एक खबर है जिसमें शशि थरूर ने जो अभी नागरिकता संशोधन बिल जो आज पेश किया जाना है उसके बारे में कहा है कि अगर ये पेश हो जाता है तो जिन्ना का जो विचार है उसकी विजय हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया संदीप आपका। शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद हैं केरल से, उनका कहना है कि जो नागरिकता संशोधन बिल है अगर वो पास हो जाता है तो जिन्ना के विचारों की जीत हो जाएगी। इसी के साथ चलते हैं जिनक मुल्क यानी पाकिस्तान और इस्लामाबाद से, आप सुनिए वसत का ये ब्लॉग कि आज वो क्या कहते हैं।
कोई अगर मुझसे पूछे कि जंगल के कानून और पाखंड में से कौन सी चीज़ मानव सभ्यता के लिए सबसे खतरनाक है, तो मैं तुरंत कहूँगा कि पाखंड। मनुष्य और जानवर में अगर कोई फ़र्क है तो बस इतना कि जानवर पाखंडी या दोगला नहीं हो सकता, इसलिए जंगल का जो भी कानून है वो तथाकथित सभ्यता की लानत से पाक प्राकृतिक नियम है। जंगल के कानून की बुनियाद ये है कि जो ताकतवर है वही सत्य है, वही महान है, मगर हम चूंकि दोगले ठहरे इसलिए जबान से तो कहते हैं कि कानून ताकतवर है, मगर वास्तव में ताकत को ही कानून मानते हैं। जैसे पीनल कोड की मोटी मोटी पुस्तकों में हमने लिख रखा है कि रेप, हत्या, अपहरण, पुलिस एनकाउंटर भयंकर अपराध हैं, लेकिन जब इन भयंकर अपराधों से कानून के हिसाब से निपटने का वक्त आता है तो अपराधी को अपराधी कहने या समझने से पहले हम मन ही मन में ये खोजते हैं कि रेप, कत्ल, एनकाउंटर और अपहरण का शिकार होने वाले का वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, इलाका, रहन सहन क्या है। उसके बाद ही हमारा दिल और दिमाग फैसला करता है कि अपराध की कितनी निंदा करनी है और कितना चुप रहना है। जैसे कानून के हिसाब से हर वो कदम आतंकवाद है जो आतंकवाद की तारीफ पे पूरा उतरता है, मगर जब आतंकवादी पकड़ा जाता है तो कानून भले कुछ भी कहता रहे, मगर हम सबसे पहले अपने मन की अदालत में आतंकवादी के नाम, धर्म और क्षेत्रीय पहचान को कटहरे में खड़ा करके उसके अपराधी या बेगुनाह होने का फैसला करते हैं और फिर इसी फैसले के अनुसार चुप्पी साध लेते हैं या उसे फांसी देने का शोर मचाते हैं या फिर निर्दोष मान लेते हैं और इसी बुनियाद पे किसी भी अदालती फैसले को न्याय या अन्याय समझते हैं। कभी फुर्सत मिले तो ज़रा भयानक अपराधों में फांसी पाने वालों या एनकाउंटर का शिकार होने वालों का डेटा खोज के देखिए कि इनमें से पैसे और असर रसूख वाले कितने थे और गरीब या पिछड़े हुए या सियासी हिसाब से कमज़ोर अपराधी कितने थे। यह अपराध को छोड़ें, गफलत और दुर्घटना में घायल या मरने वालों का डेटा निकाल लें। अगर कमज़ोर है तो कभी मुकदमा नहीं लड़ेगा, सरकार की तरफ से 5-10 लाख लेके माफ़ कर देगा या चुप हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी में पड़ा तो जो पल्ले है उससे भी जाएगा। लेकिन ताकतवर है या उसकी पीठ पे कोई मजबूत हाथ है तो इसी कानून को डंडा बना के कसूरवार से पूरा पूरा बदला या हिसाब किताब लेगा। हाँ, अगर किसी कानून की नज़र में सब बराबर हैं तो वो है जंगल का कानून। चलता हमारे यहाँ भी यही कानून है, मगर हम मानने को तैयार नहीं, लिहाजा इस न्याय से भी महरूम है जिसे प्राकृतिक न्याय कहा जाता है। अगर यही होना है तो कल से संविधान और पीनल कोड को ख़त्म करें और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी योग्यतम की उत्तरजीवता के 4 शब्दों को दीवार पे लिख दें। यकीन माने कि सब शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी और सब्र आ जाएगा।
तो ये थे पाकिस्तान से वसतुल्ला खां, आप सुन रहे थे उनका जो साप्ताहिक ब्लॉग होता है। और आज सोमवार की सुबह है और आज दिन है खेल खिलाड़ी का, यानी खेल का साप्ताहिक कार्यक्रम। सुनिए आदेश कुमार गुप्त की आवाज़ में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पहले मैच में मिली हार से उबरते हुए वेस्टइंडीज ने कल तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे 2020 मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। वेस्टइंडीज ने जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य सलामी बल्लेबाज लैंडल सिमंस के नाबाद 67 और निकोलस पूरन के नाबाद 38 रन की मदद से 18.3 ओवर में ही केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर भारत ने शिवम दुबे के 54 और ऋषभ पंत के नाबाद 33 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 170 रन बनाए। दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी मैच मुंबई में बुधवार को खेला जाएगा। और अब समीक्षा। ऑस्ट्रेलिया की चाहत, जब अगले साल भारतीय टीम वहां जाए तो 2 टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से खेले, लेकिन क्या इसी से टेस्ट क्रिकेट में जान आएगी और कितना तैयार है दूसरी टीमें भी गुलाबी गेंद से खेलने के लिए?
खास करके ऑस्ट्रेलिया की बहुत कोशिश रही है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट यह है कि उनको अच्छा नहीं लगता ऐसे स्टेडियम में मैच हो जहाँ पे देखने वाले नहीं हो, खाली खाली सीटें बहुत खराब दिखती हैं और स्पॉन्सर को भी अच्छा नहीं लगता है। तो उनका मैं समझ सकता हूँ कि वो 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं पिंक बॉल से, भारत तो एक ही खेला वो भी बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो भी घर पे था। तो जब ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाएंगे एक टेस्ट काफी होगा, पर वो भी उसके लिए पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा आपके खिलाड़ी तैयार है नहीं है। सामने की टीम बांग्लादेश नहीं है, सामने की टीम ऑस्ट्रेलिया है, और इतना आसान भी नहीं है अडाप्ट करना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चैलेंजेस हैं पिंक बॉल की। तो मैं नहीं समझता हूं आपको एक टेस्ट मैच से ज्यादा खेलना चाहिए।
ये कहना है क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली का, जो साफ साफ कहते हैं कि गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच हो लेकिन एक से ज्यादा नहीं। विजय लोकपल्ली की बात से सहमत लगते हैं एक और क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन भी।
थोड़ी सी परेशानी लग रही है इंडियन क्रिकेटर्स में और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में कि क्या प्लेयर्स हमारे इसकी आदी हैं, खेल सकेंगे या ना खेल सकेंगे। और ना भूलें कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत भारी पड़ता है हमेशा से, इंडिया को पिछली बार जीते थे लेकिन उसके पहले अगर आप इतिहास उठा लें तो अक्सर इंडियन टीम हार के आई है वहां पर। इस बार अगर एक मैच खेलते हैं तो उम्मीद रख सकते हैं आने वाले सीरीज में 2 मैचेस भी खेलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट का वो बहुत ही करीबी जुड़ा हुआ है डे नाइट टेस्ट क्रिकेट से।
भविष्य टेस्ट क्रिकेट का गुलाबी गेंद, लेकिन उसकी तैयारी तो हो। बांग्लादेश का जो हाल भारत ने किया वो सब ने देखा, तो पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया के सामने टिक नहीं सका। और भी बहुत दिक्कतें हैं गुलाबी गेंद के साथ, विजय लोकपल्ली कहते हैं।
कहाँ पे है तैयारी, क्योंकि ना डोमेस्टिक में कोई पिंक बॉल से क्रिकेट खेलते हैं। देखिए कलकत्ते में जब पब्लिक देखने आ गई तो वो नॉवेल्टी फैक्टर था थोड़ा, लेकिन उन्होंने क्या खेल एंजॉय किया उसमें, तो कोई क्रिकेट तो अच्छी देखने को मिली ही नहीं। और यही हाल होगा जब जब आप पिंक बॉल जो इतना स्विंग करती है, बॉल कई बैट्समैन ने कहा है कि देखने के लिए उनको मुश्किल होती है क्योंकि दिखती नहीं है गेंद ठीक से। खुदा न खास्ता किसी को बहुत गहरी चोट आ जाए तो खेल की रेपुटेशन के लिए खराब है, कोई स्पॉन्सर फिर आगे नहीं आएगा। जहां जहां पे ड्यू फैक्टर वो एक आपको मुसीबत झेलनी पड़ेगी, और वीकेंड पे ही शुरू करना पड़ेगा टेस्ट मैच, क्योंकि तभी पब्लिक आएगी देखने शाम को। जो ट्रेडिशनल क्रिकेट है वो आप खत्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए अफगानिस्तान के साथ क्या पिंक बॉल टेस्ट खेलेंगे? और जहां तक फ्यूचर का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटर समझ गए हैं कि T20 और T10 के आगे टेस्ट क्रिकेट झुक रहा है, और किसी तरह वो चाहते हैं कि नए नए चीजें इंट्रोड्यूस करें और लोगों को कहें कि आइए आइए नई एक नया इतिहास बन रहा है, बाकी क्रिकेट देखिए।
कभी टेस्ट क्रिकेट में अपनी चमक बिखेरने वाली वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और श्रीलंका का स्तर जब बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसा हो गया है, तो वहाँ भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ही कहाँ तक गुलाबी गेंद के सहारे दर्शकों को मैदान तक लाएंगे। आखिरकार दर्शक भी तो सारा खेल समझते हैं। उधर नेपाल में जारी दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की कामयाबी का सिलसिला जारी है। कल तक भारत के खाते में 131 स्वर्ण, 77 रजत और 40 कांस्य पदक सहित 248 पदक थे। कल भारतीय खिलाड़ियों ने फेंसिंग, निशानेबाजी, हैंडबॉल, जूडो, तैराकी, कुश्ती और टेनिस में अपना दबदबा दिखाते हुए ज्यादातर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालांकि 2-1 से हार गई, लेकिन इसके बावजूद वो 3 देशों के टूर्नामेंट में अंक तालिका में पहले स्थान पर रहने के कारण टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रही। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और अब चलते चलते प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में विवादित नागरिक संशोधन बिल पेश करेंगे। हांगकांग में 6 महीने से जारी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के दौरान रविवार को अब तक की सबसे बड़ी रैली निकली। दिल्ली में उस इमारत के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिनमें रविवार को लगी आग से 43 लोगों की मौत हो गई थी। अमरीकी नेवी बेस में 3 साथियों को मारने वाले सऊदी एयरफोर्स लेफ्टिनेंट ने इस घटना को खुद अंजाम दिया था। इराक की राजधानी बगदाद में सरकार विरोधी प्रदर्शन अभी भी जारी हैं। एक वरिष्ठ अमरीकी डेमोक्रेट सदस्य का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। फ्रांस में 4 दिन तक चले विशाल प्रदर्शनों और यातायात कर्मचारियों, डॉक्टरों, अध्यापकों और वकीलों की हड़ताल के कारण जनजीवन ठप सा पड़ गया है। ब्रिटेन की मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में अपना पूरा जोर लगा दिया। सऊदी अरब के रेस्तरां में अब औरत और मर्द के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार नहीं होंगे। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।